You are listening to Hrishikesh Kesham Rai Purji on counseling class Tuesday on Disabled Day of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Gadadhar Pandit, recorded on 16th of June 2015 at Rohini Temple, Hare Krishna.
हरे कृष्ण। तो आज जो है हमारे दो आचार्यों का, एक तो स्वयं गदाधर पंडित जो कि महाप्रभु की इस लीला में स्वयं राधा रानी, और दूसरे हैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जो कि राधा रानी की ही मेड सर्वेंट हैं, जो कि ललिता सखी के अंडर में उनकी सेवा करती हैं कमल मंजरी के रूप में, भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो इनका आज डिसअपेयरेंस डे है तिरुभाव। तो बताया जाता है वैष्णवों का आविर्भाव और तिरुभाव ये दोनों ही उत्सव कहे जाते हैं वैष्णवों के लिए। आविर्भाव इसलिए उत्सव है क्योंकि हम जैसे कंडीशन सोल्स जो संसार में हैं और जन्म मृत्यु और नाना प्रकार के संघर्ष से जूझ रही है जो इस संसार में, उन लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब वैष्णव अवतरित होते हैं तो वैष्णव भगवान के अवतार से ज़्यादा मर्सीफुल होते हैं। भगवान कृष्ण तो या भगवान के अन्य अवतार किसी न किसी पर्पस को पूरा करने के लिए आते हैं। हम अगर भगवान के अन्य अवतारों को देखें, चाहे वो मोहिनी अवतार हो, चाहे वो कूर्म अवतार हो, चाहे वामन अवतार हो, है ना, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप को मारने वाले अवतार हो, है ना, वराह रूप में या नरसिंह भगवान के रूप में, तो इन सभी अवतारों में भगवान का कुछ विशेष प्रयोजन रहता है और इसके साथ उसके साइड बेनिफिट्स भी रहते हैं। एक तो पर्टिकुलर एक पर्पज को सॉल्व करने के लिए आए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कृति के लोगों का वध करने के लिए। तो दुष्कृति और दानवों का वध करने के लिए जो कि वैष्णवों को या भक्तों के ऊपर अत्याचार करते हैं या उनको भक्ति नहीं करने देते हैं, तो भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। एक दो कुर्सी और ले लो, अगर कुर्सी को चाहिए होगी तो पहले ही रखो। अच्छा, तो इस प्रकार के अवतरण का विशेष प्रयोजन होता है। तो भगवान जब जब अवतरित होते हैं तो इस प्रकार के विशेष प्रयोजनों को पूरा करने के लिए अवतरण लेते हैं, और भगवान के अवतरण होने के बाद जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु आए तो उनके अंतरंग कारण और बहिरंग कारणों को हम जानते हैं। अंतरंग कारण थे कि भगवान स्वयं ही जानना चाहते थे कि माधुर्य रस की महिमा, श्रीमती राधा रानी जी का उनके प्रति प्रेम की महिमा, या उन रसों का आस्वादन करना चाहते थे, या उस सेपरेशन को गोपियों के उसको फील करना चाहते थे। तो उन सब चीज़ों को भगवान खुद जो हैं चाहते थे कि मैं क्या करूं, जानूं इस चीज़ को, उसको रिलिश करूं कि राधा रानी का मेरे प्रति जो प्रेम है, जो आनंद है माधुर्य में, उसका जो आनंद लेती हैं जो कि 1 करोड़ गुना मेरे आनंद से ज़्यादा है, तो वो कैसे अनुभूति होती है। तो महाप्रभु इसके लिए उसको अंतरंग कारण है कि उसको चखने के लिए, उसको समझने के लिए आए, और बहिरंग कारण में युग धर्म की स्थापना करना, जीवों का उद्धार करना, उनको कृष्ण प्रेम देना जो पहले कभी नहीं दिया था, अन्य किसी अवतार में नहीं दिया था। तो महाप्रभु को इसलिए भी महावदन्याय कहते हैं, और इसलिए भी महावदन्याय कहते हैं क्योंकि भक्त रूप में आए हैं, क्योंकि कृष्ण ने तो यह 10 नाम अपराध में जब पढ़ते हैं कि कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश किसी को नहीं करना चाहिए, किसको, विशेषकर जो अश्रद्धालु है, जिसकी भगवान के नाम में रुचि नहीं है या श्रद्धा नहीं है, या भगवान ने बोला कि इस प्रकार के लोग मेरी शरण में नहीं आते, या ऐसे लोगों को आप जिनके अंदर निष्ठा नहीं है, जिनके अंदर मेरे प्रति श्रद्धा नहीं है, ज्ञान मत दो, मना किया भगवत गीता। लेकिन जब भक्त के रूप में आते हैं, जब भक्त के रूप में आते हैं स्वयं चैतन्य महाप्रभु अर्थात भगवान, तो क्योंकि भक्त के रूप में आए हैं तो महावदन्य कहला रहे हैं, मतलब कृष्ण बहुत दयालु हैं, गुण हैं, सब कुछ हैं, लेकिन महाप्रभु के रूप में आने पर अर्थात राधा रानी का भाव लेने पर वो महावदन्य कहला रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि भगवान से बड़ा भक्त होता है या भगवान के दया का जो गुण है भगवान के अंदर, उससे बड़ा गुण किस में है? भक्तों में है। इसलिए जब कृष्ण आते हैं या अन्य अवतार होते हैं तो भगवान अपने परिकरों के साथ ही आते हैं, उनको बड़े कम लोग जानते हैं, समझ पा रहे हैं? जब कृष्ण अवतरित होते हैं, कोई लीला करते हैं, तो जब गायें पृथ्वी माता गायें के रूप में ब्रह्मा जी के पास जाती है और कहती है कि मैं पाप को और सहन नहीं कर सकती, बहुत पीड़ा में हूँ, मेरा उद्धार कीजिए, तो ब्रह्मा जी जाते हैं क्षीर सागर में, भगवान से प्रार्थना करते हैं और भगवान की जो है वाणी उनको सुनाई देती है। क्या कृष्ण कहते हैं कि बस अवतरित होने वाला हूँ, तुम सभी देवताओं को बोलो कि वो नीचे जाकर प्लानिंग करें, योजनाएं बनाएं और खुद पहुँच जाएं वहाँ पर। और कुछ भगवान के परिकर साथ में आते हैं, तो भगवान अपने परिकरों और उन्हीं देवताओं को जो कि उनको जॉब असाइन हुआ है, जैसे ये अनाउंसमेंट हुई तो सारे देवता लोग बैठ गए मीटिंग करने कि भाई कौन क्या क्या बनेगा, भगवान अवतरित होने वाले हैं, है ना, तो सब लोग रोल डिसाइड करने लगे, किसी ने कहा मैं ये, किसी ने बोला मैं ये, है ना। पांडवों में भी वो एक अंश अवतार रहा देवताओं का, इंद्र का, वायुदेव का, इत्यादि का, तो ये सारे के सारे लोग अपना रोल डिसाइड कर लिया। इतने में वो जो सोम थे उनको भी अभिमन्यु का रोल दिया गया ना, उनके पुत्र को, तो उनके लिए छोटा रोल डिसाइड किया। तो इससे पता चलता है कैसे देवताओं में मीटिंग हुई और भगवान अवतरित होने वाले हैं तो उसे पहुंच गए। तो कहने का मतलब ये, जब भगवान अवतरित होते हैं तो उनके परिकर साथ में आते हैं, उनके मध्य में रहते हैं, असुरों का वध करते हैं, अपना लीला स्थापित करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन भगवान जब भक्त के रूप में आते हैं, जैसे महाप्रभु के रूप में आए, तो उन्होंने वो परिकरों के साथ तो आए लेकिन परिकरों से अलग जाकर भी कृष्ण प्रेम दिया, इसलिए महावदन नहीं कहते, क्योंकि भक्त के रूप में आए थे। और उनके जो और पार्षद आए उनकी महिमा या उनका उनकी दया तो और भी ज़्यादा बड़ी थी। किस रूप में? जैसे हम बता रहे हैं आविर्भाव होता है तो भक्तों को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि कृष्ण तो अपने परिकरों के साथ घेरे में है, अपनी तो बारी आने नहीं, लेकिन भगवान के भक्त स्वच्छंद हैं। भगवान के भक्तों के पास जैसे ऐसा वीजा है जो कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं और किसी भी जगह को तीर्थ बना सकते हैं। तीर्थम कुर्वन्ति तीर्थानि, मतलब जहां पर भी जाएंगे वो तीर्थों को भी शुद्ध करने वाले हैं और कहीं किसी भी स्थान को जाएंगे तो वो तीर्थ बना देंगे। जैसे श्रीमद् भागवतम में कहा है कि जैसे हम लव मात्र साधु संघ की बात करते हैं तो क्या फायदा है लव मात्र साधु संघ का, कि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के 14वें 15वें श्लोक में बोला है, जहां पर कहा है कि श्लोक है वो जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो भगवान के भक्त हैं उनका लव मात्र संग भी इतना जल्दी इतनी शीघ्रता से पवित्र करता है लोगों को। सद्य पुनंति उपश्रेष्ठा, है ना, स्वर्धनी आपो अनुसेवया। स्वर्धनी बोलते हैं गंगा को, कहते हैं गंगा का सेवन करने से या उसमें डुबकी लगाने से और बार बार लगाने से हमारे पाप क्या होते हैं? क्षीण होते हैं, खत्म होते हैं, कहते हैं। लेकिन बार बार लगाने से, लेकिन अगर किसी पवित्र साधु के नजदीक जाता है कोई व्यक्ति लव मात्र साधु संग, तो वो इतनी जल्दी व्यक्ति को पवित्र करता है जितना कि बार बार गंगा में स्नान करने से भी पवित्र नहीं होता। तो ये साधु के महत्व बता रहे हैं। इसलिए जब भगवान के भक्त अवतरित होते हैं तो वैष्णवों के लिए उत्सव का समय है, क्योंकि अब वो वैष्णव कृष्ण से भी ज्यादा दयालु हैं, कभी भी कहीं भी किसी भी जगह जाएगा तो सबको पवित्र करेगा, तीर्थ बनाएगा सब जगहों को, और भक्तों का जो है क्या करेगा, को पवित्र करेगा अपना संग देकर। जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने बोला था, वो इतना रुकते थे घर में जितना कि गायें धोने का समय। और घरों में क्यों जाते थे या क्यों रुकते थे, ताकि वो जो लोग अपने जीवन के लक्ष्य को भूले हुए हैं और केवल आहार निद्रा भय और मैथुन को लक्ष्य बनाए हुए हैं, भगवान से विमुख हैं, मनुष्य जीवन प्राप्त होने के बाद भी रोजमर्रा के उन्हीं कार्यों में लगे हुए हैं, तो ऐसे लोगों के पास जाकर अपना संग देना, उनको कथा सुनाना और फिर वहां से निकल जाना, या उन भक्तों से उनकी जीवन उपार्जन की जो विधि है, जो उनका धन है, जो लक्ष्मी है, या जो उनके उन्हें कुछ बनाया है, उसको स्वीकार कर कर दान रूप में या भिक्षा के रूप में जब हम वो लेंगे तो कौन पावन होगा इसमें, वो गृहस्थ पवित्र होगा, क्योंकि वो अपने द्वारा कमाई गई लक्ष्मी को वैष्णवों की सेवा में लगा रहे हैं। तो कितना बड़ा माध्यम है, एक भक्त जब किसी के घर जाता है या किसी को अपने दर्शन देता है या कथा करता है या उससे कोई भिक्षा लेता है, वो बात अलग है कि दान देने वाला गृहस्थ की मानसिकता वैसी नहीं होती, वो दान देकर अपने आप को करता, अपने आप को भोगता या अपने आप को स्वामी समझ लेने लगता है कि मैं इनको पालने वाला हूं। जब ऐसी मानसिकता आती है तो उसकी भी पवित्रता खुद की उतनी नहीं रहती, होता है ना ऐसे, समझते ना कई बार होता है कि हमने तो इतना दान दे दिया जी, हमारा नाम भी नहीं आया, हमने तो ये कर दिया, हमारे को ये गिफ्ट नहीं मिला, आज सबको पांडवों को लड्डू मिले, मैं भी तो पांडव हूं, मुझे नहीं मिला है। तो हमारी जो मानसिकता है वो यहीं पर खत्म हो जाती है। इसलिए शायद हम लास्ट में बता दें, श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद में कहीं आता है कि गृहस्थों का जो धन है, पहले तो बता रहे हैं कि जिन परिवारों में भगवान के भक्त अपने चरण नहीं रखते, वैष्णव जन नहीं जाते जिन परिवारों में, तो वो परिवारों को ऐसा समझना चाहिए जिस प्रकार एक सूखे पेड़ पर अजगर लिपटा हो, शुष्क वृक्ष में अजगर लिपटा हो, मतलब सांप और वृक्षों से भरा हुआ हो। तो जिन परिवारों में वैष्णव नहीं जानते, अगर आप कृष्णा बुक पढ़ते हो तो उसमें एक जगह लिखा है, नारद जी कह रहे हैं कि मैं निर्धनों के परिवारों में तो आसानी से चला जाता हूँ, वैष्णव लोग आसानी से चले जाते हैं, क्यों, क्योंकि वहाँ पर लिखा नहीं होता बी वेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान, है ना, और वहाँ गार्ड नहीं खड़ा होता लोगों को धक्का मारने के लिए, चलो चलो यहाँ से जाओ, सेल्समैन हो, क्या हो, चोरी करने आए हो। तो जो भिक्षुक होता है वो आराम से खटखटा के किसी के भी घर में जाकर दो बातें कथा के कर अपना दान भिक्षा लेकर निकल जाते हैं, तो पवित्र कर जाता है ऐसे परिवारों में। लेकिन अब ना तो भिक्षुक वैसे रहे, क्योंकि अब तो लोग भिक्षुक के रूप में भी आ जाते हैं गड़बड़ करने के लिए, और दूसरा अगर भिक्षुक आ भी जाए तो फिर परिवार वालों की स्थिति ऐसी नहीं रहती कि उसको उसका वेलकम कर सकें या उसको कुछ दे सकें ऐसी चीज़। तो कहने का मतलब क्या है, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनका उद्देश्य इस धरा पर केवल ये होता है कि भगवान के प्रयोजन को पूरा कर सके, जो भगवान स्वयं नहीं करते उसका क्रेडिट वो अपने भक्तों को देते हैं, क्योंकि सारी दुनिया भगवान का तो गुणगान करती है लेकिन भगवान अपने भक्तों का गुणगान करने के लिए उनको मौका देते हैं कि वो अपनी पवित्रता से, अपनी भक्ति से दूसरों को आकर्षित करके भगवान का भक्त बने। जैसे प्रभुपाद जी को कभी किसी ने कहा कि रूपा आपने प्रचार कर डाला इतना, इतनी मतलब आपने पूरे विश्व में प्रचार कर डाला, इतने लोगों को भक्त बना, मतलब इच्छों को भी भक्त बना लिया, बट ये काम तो आपके गुरु भी कर सकते थे, भक्ति सिद्धांत महाराज जी भी बहुत क्वालिफाइड थे, या फिर यूं कहें तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी कर सकते थे, और खाली भारत भारत में भ्रमण किया उन्होंने, वो विदेश में क्यों नहीं गए, अगर जाते तो भगवान स्वयं थे, तुरंत कर देते, हो गया काम, भविष्यवाणी करने की क्या जरूरत थी। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि क्योंकि भगवान हमें क्रेडिट देना चाहते, मुझे क्रेडिट देना चाहते, भगवान भक्तों को क्यों क्रेडिट देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के भक्त, क्योंकि भगवान अपने भक्तों का जो प्रेम है उनके प्रति, या जो लगाव है उनके प्रति, या जो समर्पण है भगवान के प्रति भक्तों का, उसको रीपे नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, अहेतु की अप्रतिहता यात्मा सुप्रसिद्ध, कि भक्त लोग किस मानसिकता से भक्ति करते हैं, अहेतु की, मतलब जब वो अपना मन वाणी और कर्म भगवान की सेवा में लगाते हैं तो उसके पीछे कोई हेतु नहीं रखते। हेतु का मतलब क्या होता है, कोई इच्छा, भौतिक इच्छा नहीं रखते वो कि मुझे ये मिल जाए, ये ठीक हो जाए, वो हो जाए, फिर ये हो जाए तो ये हो जाए, ऐसा कोई हेतु नहीं रखते और समर्पित रहते हैं भगवान को। अहेतु की किसी प्रकार का हेतु नहीं, अन्य अभिलाषिता शून्यम, सब जीरो कर देते, नहीं कृष्ण के चरण कमल के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम व जगदीश कामय, किसी चीज की कामना नहीं है, ना अनुयायियों की, क्योंकि पहले तो व्यक्ति का स्तर है कि चलिए कि मैं धनम, मुझे धन नहीं चाहिए, ठीक है समझ गए, मुझे अच्छा परिवार में जन्म नहीं चाहिए, मुझे सुंदरी नहीं चाहिए, मुझे अच्छा, ये सब जब त्यागता है तो फिर वो भक्त बन जाता है। भक्त बनने के बाद उसका गुणगान शुरू हो जाता है, वो भक्ति विषय लीडर बन जाता है, वो प्रचार करने के उसके अंदर उत्कंठा जाग जाती है। लेकिन साथ ही साथ इच्छा क्या करती है, कविताओं वा, है ना, कि अब लोग मुझे पहचानने लगे, काफी टाइम हो गया इस मोमेंट, अब लोग मुझे जाने, अब पहचाने, अब सबको मेरा कहना मानना चाहिए, सबको मुझे प्रणाम करना चाहिए, सब मुझे प्रणाम करें और इस प्रकार मेरी पहचान बने। और उसका दुख क्या होता है कि उसके द्वारा जो लोग जोड़े जाते हैं, अगर वो किसी दूसरे ग्रुप में चला जाए तो उसको दिक्कत होती है, या फिर कोई व्यक्ति उसको प्रणाम ना करे तो दिक्कत होती है, या उसको पूरी तरह समर्पित ना हो तो दिक्कत होती है, या फिर वो कम समर्पित हो और कुछ अलग चीज़ें कर रहा हो तो दिक्कत होती है। तो इस प्रकार कविताम वो चाहता है ऐसे लोग हों जो मेरा गुणगान करते रहे, वो आगे स्टेज पे पहुंचता है व्यक्ति। लेकिन हम बता रहे हैं कि अहेतु की किसी प्रकार का हेतु नहीं रखते भगवान को। तो इस प्रकार भगवान के भक्त जब इस प्रकार अपना सब कुछ समर्पण करकर, समर्पित करकर भगवान का गुणगान करते हैं, तो भगवान चाहते मेरे भी भक्तों का गुणगान हो, इसलिए वो क्रेडिट भगवान अपने भक्तों को देते हैं कुछ भी करने के। तो जब इस प्रकार के वैष्णव अवतरित होते हैं तो वैष्णवों के लिए, भक्तों के लिए उत्सव का माहौल होता है कि वो आ गए इस धरा पर हम जैसे पतित लोगों का उद्धार करने के लिए। अब कहीं ना कहीं उनका दर्शन होगा, कहीं ना कहीं उनका हम गुणगान करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनसे सुनेंगे, तो इसलिए वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब कोई वैष्णव अवतरित होता है। फिर तिरोभाव, तिरोभाव में भी उत्सव। भाई तिरोभाव कैसे उत्सव है, ऐसा वैष्णव हमें छोड़कर जा रहा है तो विरह तो होता है ना, दुख होता है भक्तों को, लेकिन साथ ही साथ उसको उत्सव मनाते हैं, ठीक है चले गए। क्यों मनाते हैं, क्योंकि जब ऐसे वैष्णव जो भगवान की आज्ञा से इस धरा पर आकर हम जैसे पतित आत्माओं का फायदे के लिए आए, उनका उद्धार करने आए, कितना समय तक वो यहाँ पर इस भौतिक जगत में कोई भी नहीं रहना चाहता, जहाँ और शुद्ध भक्त को रहना चाहेगा, हमको इतना कष्टदायक जगह लग रही है तो शुद्ध भक्त क्यों रहेगा यहाँ पर। लेकिन भगवान की योजनाओं से, भगवान की अंतरंग लीलाओं को छोड़कर, भगवान की आज्ञा से जब भक्त लोग यहाँ इस धरा पर आते हैं भगवान की योजनाओं को पूरा करने के लिए, और उनकी योजनाएं क्या है कि सब भक्त बने, तो ऐसे भक्त जब यहाँ पर आते हैं और इस वातावरण में हमारा शुद्धिकरण करते हैं और जब फिर वो वापस जाते हैं तो क्यों उत्सव होता है, क्योंकि वो फिर से अपने धाम को कृष्ण की उन्हीं सब लीलाओं में सम्मिलित होकर उनकी फिर से सेवा कर सकें। तो वैष्णव इसलिए प्रसन्न होते हैं कि चलो ये जो वैष्णव थे इन्होंने अपनी सेवा करी, अब ये फिर से भगवान के अंतरंग सेवा में जाकर फिर से भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे। कौन प्रसन्न होगा फिर इससे, क्योंकि भगवान को भी दुख है कि मेरा भक्त मुझसे दूर है, तो ये वैष्णव जो वापस जाएंगे तो फिर से भगवान की सेवा कर पाएंगे। और वैष्णव जो उनसे गए हैं वो भी बहुत अधिक प्रसन्न होंगे क्योंकि वो फिर से भगवान की सेवा में पहुंच रहे हैं। तो तिरोभाव भी भक्तों के लिए क्या है, एक उत्सव बन जाता है इस प्रसन्नता से, इस खुशी से कि वो वैष्णव फिर से भगवान। इसलिए जब हम लोग जय ध्वनि करते हैं तो या जितने भी आचार्य हैं उनके सबके आगे लिखता हूँ, ओम जय नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस विजयाचार्य स्तोत्र शत इस दिवान के एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जी। नित्य लीला प्रविष्ट, नित्य ही लीला में रहते हैं और फिर से यहाँ पर आए और नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। तो इस प्रकार वैष्णव जन उनके आविर्भाव और तिरुभाव को उत्सव के रूप में मनाते हैं। तो आज जो आविर्भाव था, तिरुभाव था, वो था भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का। और भक्ति विनोद ठाकुर महाराज का जन्म और उनका पूरा जीवन हम जैसे संघर्षरत भक्तों के लिए, गृहस्थों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। मतलब एक व्यक्ति इतना बड़ा प्रेरणा का स्रोत बन सकता है या इतने स्पिरिचुअल डीड्स को एकम्प्लिश कर सकता है कोई सोच भी नहीं सकता। तो आज जैसे मॉर्निंग में हमारे पंजाबी भाग में इसी पे प्रवचन था तो मैंने उन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा सोचा कि भक्ति विनोद ठाकुर जी के जीवन पर अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर लें तो उससे हम लोगों भी को हम भी पवित्र होंगे उनके बारे में सुनकर। और दूसरा ऐसे वैष्णव से जब हम लोग प्रार्थना करेंगे तो निश्चित रूप से आज के दिन आविर्भाव तिरुभाव के दिन ऐसे वैष्णव बहुत ही ज़्यादा और कृपालु हो जाते हैं। तो उनका स्मरण कर उनसे प्रार्थना कर हम उनकी कृपा को आकर्षित कर सकते हैं, उनका ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और फिर अपनी जो प्रार्थनाएं हैं जब हम उनके आगे रखेंगे तो वो पूरी हो सकती है। तो आध्यात्मिक तो बताते हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी, वैसे इनकी दो शादियां हुई थी, एक तो बहुत छोटी उम्र में हो गई थी 11-12 साल की उम्र में और लड़की भी जो 5 साल छोटी थी, 5-6 साल की थी शायद। तो पहले तो गुड्डा गुड़ियों की खेल के जैसे शादी हो जाती थी। तो उनके लगभग 13 संतानें बताई जाती हैं जिसमें विशेष सभी भक्त थे लेकिन रे ऑफ विष्णु जो थे वो थे बिमला प्रसाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी वैसे बचपन से ही बहुत ज़्यादा पढ़ाकू जिसे बोलते हैं स्कॉलर, हर चीज़ में उनका एक्सपर्टीज हर सब्जेक्ट में, यहाँ तक कि वो ट्यूशन्स भी लेते थे और बाहर के लोग भी उनसे पढ़ने आते थे, इंग्लिश में तो उन्होंने मास्टरी कर रखी थी। तो बचपन से जो है वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू थे। 11 साल की उम्र में उनके पिताजी का जो है देहावसान हुआ था तो फिर तब उसके बाद से वो मामा जी के परिवार में रहते थे, उनको पाला जाता था। और भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है जब 18 वर्ष के थे तो कलकत्ता के कॉलेज में थे, वो वहाँ पर उन्होंने अपने और चीज़ें लिखना शुरू करी। लगभग 12 किताबें वो लिख चुके थे तब तक जो कि कई टॉपिक्स पर थी। भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो जीवन था उसमें उन्होंने बचपन से ही श्रीमद् भागवतम और अन्य ग्रंथों के प्रति उनकी रुचि थी। तो एक बार जब पता चलता है कि एक वृक्ष में भूत था, पहले ऐसी चीज़ें बहुत होती थी बनियन ट्री के पास, तो लोग कहते थे कि वो जो भूत है लोग जब उसकी पूजा करते हैं तो वो ना आसपास के जो मजिस्ट्रेट जज होते थे ना उनके डिसीजंस को अपने हिसाब से करवा लेते थे भूत की पूजा कर। तो वो जब वहाँ गए तो उन्होंने क्या किया, एक किसी व्यक्ति को बोला ये श्रीमद् भागवतम लो और आप यहाँ पर बैठ के पूरा पढ़ते रहो श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ा के लगभग 1 महीना, तो 1 महीने के बाद क्या होता है कि वो जो वृक्ष था जिसमें भूत रहता था वो वृक्ष अपने आप ही फट गया और टूट कर नीचे गिर गया, मतलब भूत का अंतर्धान हो गया। तो लोग देखकर हैरान हो गए और क्योंकि गाँवों में तो कुछ भी चमत्कार दिख जाए तो लोग उसकी तरफ हो जाते थे, तो अगर भूत को चमत्कार दिखा रहे तो लोग भूत की तरफ थे। आज भी ऐसे ही है हमारे संसार में भी ऐसे कोई थोड़ा सा चमत्कार, शहरों में तो फिर भी लोग अब सारी टेक्नोलॉजी जानते हैं तो इसलिए किसी को सरेंडर नहीं होते, नहीं तो कोई कहीं से कुछ निकाल दे कोई कहीं से कुछ निकाल दे तो लोग उसको क्या मान बैठते थे, भगवान मान बैठते थे, ऐसी स्थिति थी। तो जैसे ही वो वृक्ष टूटा खत्म हुआ तो वहाँ के गांव वालों का विश्वास बढ़ गया श्रीमद् भागवतम। तो बड़ा सुंदर एक तरीका था, उनका भी फेथ था और उन्होंने उसको एस्टैब्लिश किया भागवतम के लिए कि ताकि लोग जो हैं वो करें। एक बिशकिशन नाम का, जिसमें हमने ड्रामा भी करते हैं भक्ति ठाकुर जी का, वो भी ऐसे एक तांत्रिक संकारी था, योगी, उसके पास बड़ी योगिक शक्तियां थी। भक्ति विनोद ठाकुर जी के समय पर आप समझिए, भगवान जैसे हम बता रहे कि बड़े बड़े अवतार लेते हैं बड़ी बड़ी चीज़ों को करने के लिए, तो जो वैष्णव जन आते हैं तो उनके पास भी बड़े सारे काम होते हैं करने के लिए। सारी लीला स्थली पर ठूंढा 6 गोस्वामियों ने और महाप्रभु की सारी टीचिंग्स को राइटिंग में लिखा, तो ये उनके काम थे। लेकिन जब भक्ति विनोद ठाकुर जी और अन्य भक्त आए तो उन्होंने क्या किया कि महाप्रभु के जाने के बाद जो अप संप्रदाय उठ गए थे, बताते 13 तरह के अप संप्रदाय तैयार हो चुके थे। उन संप्रदायों में क्या होता था, कईयों ने अपने अपने नए मंत्र इनोवेट कर लिए थे और सब अपने अपने सखियां और नाना प्रकार का सहज्यापन जिसे बोलते हैं, सहज्य का मतलब होता है कि आप जिस स्तर पर नहीं हैं उस स्तर पर दिखावा कर रहे हैं, या अपने को गोपी मान रहे हैं, या अपने को एक दूसरे को नाम दे दिए हैं और अभी से उस स्तर पर कार्य कर रहे हैं। तो ये सहज्यगिरी इतनी चल पड़ी थी कि लोग वैष्णव कल्ट को, वैष्णव कल्चर को सेक्स कल्चर बोलने लगे थे, क्योंकि वो लोग ना तो साधना का किसी का पालन करते थे और जो भी फॉलो करते थे वो क्या करते थे, जो शास्त्रों की विपरीत चीजें, जैसे अपने आप को सखी इत्यादि बता दिया और कई लोग तो उल्टे सीधे काम भी करते थे। इसलिए पूरे के पूरे समाज में चैतन्य महाप्रभु के जो जो चला आ रहा था परंपरा इत्यादि, उसको लोग बड़े गलत शब्दों से पुकारने लगे थे और अंधविश्वास बढ़ गया था। और इस प्रकार जब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने देखा कि 6 गोस्वामियों की इतनी टीचिंग थी, उसमें सब कुछ दिया है और ये नए नए कल्ट बना के बैठ गए हैं, तो उन सारे कल्ट को क्या किया, खत्म किया। अपस्तारण भक्ति सिद्धांत मार्ग ने किया और भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भी किया। अब सोचकर देखिए, आज भी अगर हम कई मठों में जाते हो, जब कभी कीर्तन, जब हम लोग धाम यात्रा में होते हैं, चाहे वो जगन्नाथपुरी हो या कहीं हो, जगन्नाथपुरी में ज्यादा दिखाई देते, तो अगर कभी रथ यात्रा में जाएंगे तो रथ यात्रा में आप इन सारे संप्रदायों को अभी भी देखेंगे। आप वैसे कोई गया रथ यात्रा में, तो वहां जितने कीर्तन हो रहे होते, कभी आपने देखा है क्या मंत्र बोल रहे हैं या किस प्रकार का वेश धारण करके वो नाच रहे हैं, आप हैरान हो जाएंगे। इस प्रकार के आप संप्रदाय अब फिर से एग्जिस्ट कर रहे हैं और उन लोगों के तिलक विलक हम जैसे मिलेंगे, शिखाएं भी हमारी तरह रखेंगे, लेकिन जब नृत्य करेंगे तो सर पर चुन्नी लेकर स्त्री वेश में या इस प्रकार डांस करके वो ये दिखाना चाहते हैं हम भगवान की सखी हैं। और उनके मंत्र को अगर आप सुनेंगे तो वो भी इस प्रकार के होंगे जिसमें राधा कृष्ण राम सीता युगल मंत्र और एक ही मंत्र में सब होंगे और बड़ा अट्रैक्टिव लगता है लोगों को, भाई इसमें तो सब कुछ है, हरे कृष्ण भी है, राम भी है, गौर भी है, निताय भी है और सब कुछ आ गया इसमें। तो इस प्रकार बहुत जल्दी व्यक्ति डेबिट हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो ये जो सहिज्यापन है इसका बहुत तरह से उन्होंने खंडन किया। आज भी अगर आप कहीं जाएं उन मठों में तो कई जगहों पे आपको कीर्तन करते मिलेंगे लेकिन यही मंत्र का उच्चारण, उल्टे सीधे मंत्र का उच्चारण। अगर आप देखेंगे इवन हरिदास ठाकुर जी की समाधि में भी अगर आप जाएंगे कभी, वहाँ भी कीर्तन चल रहा होता है, हरिदास ठाकुर पूरा जीवन हरे कृष्ण महामंत्र करके है ना, 3 लाख नाम लेकर अपने को नाम आचार्य कहलवाए, महाप्रभु ने खुद समाधि दी, उन्हीं की समाधि में कोई और मंत्र हो रहे हैं, कितना बड़ा मतलब विडम्बना है कितनी बड़ी। तो इस प्रकार के उस समय को उन्होंने ध्यान करे। और 13 संप्रदाय जो थे बड़े खतरनाक थे, मैं बोल रहा हूँ कल का सुन लीजिए। एक था ऑल बॉल, दो आई ऑल बॉल, करता भज, नेदा, दरवेशा, सनी, सहिज्या, सखी बेती, स्मार्त, जता गोसने गोसाई, जात गोसाई, अतिवेदी, चूड़ाधारी और गौरांग नागरी, इस प्रकार के नए नए प्रकार के संगठन खुल गए थे। तो इन सबका खंडन किया। तो जो ये बिशकिशन था ये भी अपने आप को भगवान का अवतार बताता था और इसके पास कुछ योगिक सिद्धियां भी थी, तो इनको जब मजिस्ट्रेट बनाया गया तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले भेजा कि इनके पास जाओ, पहले तो इनको ठीक करो जो ये समाज में इस प्रकार वो कर रहे हैं। तो केदारनाथ के नाम से जाने लेते भक्तिनाथ ठाकुर, और ये वहाँ गए और वहाँ पर जाकर जब गए तो उन्होंने जो देखा वो ये कि वो व्यक्ति अपने आप को भगवान का अवतार बताता है और वहाँ के राजा लोग भी उसके शिष्य थे, वहाँ के राजा भी शिष्य थे, इसलिए वो स्त्रियों को भेजते थे, जाओ आज महाराज की रासलीला है भगवान की, तो ऐसा करके भेजते थे और वो रासलीला करते थे उनके साथ। तो केदारनाथ जी ने उनको क्या किया, ललकारा। तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, अगर भगवान हो तो तुम्हें तो जगन्नाथपुरी में होना चाहिए, तुम जाओ ना कभी जगन्नाथपुरी में जो असली भगवान है उनका दर्शन करो, क्योंकि शास्त्रों में तो देखा है कि जगन्नाथपुरी में भगवान कलयुग में जगन्नाथ में जगन्नाथ के रूप से जाने जाएंगे कलयुग के भगवान। तो विश्वकिशोर को बहुत बुरा लगा, और जो जिसकी अहंकार इस लेवल पर हो तो उसको अगर मैं बोले तो दूसरे भगवान के चरण पकड़ तो उसके लिए बड़ा मुश्किल। तो उसने ललकारा, तुम किस बात, किस भगवान की बात कर रहे हो, उस लकड़ी के भगवान की जो दे नहीं सकता, बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता। अरे भगवान तो मैं हूँ, मैं देखो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करता हूँ और आज रासलीला भी ना मना रहा। तो इस प्रकार का वाद विवाद हुआ और भक्तिविनोद ठाकुर जी ने क्या किया, उसको पकड़कर जेल में डलवा दिया। लेकिन क्योंकि वो यौगिक था तो कई बार ये पता चला कि उसके ऊपर इस प्रकार करने से भक्तिविनोद ठाकुर जी को भी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा, परिवार बीमार हो गया, सब कुछ ऐसी दिक्कत हुई, उनकी भी तबीयत खराब हुई। तो उन्होंने क्या किया, जब पता चला कि इसे विश्वकिशन का जो यौगिक शक्तियाँ सारी उसकी शिखा में हैं, मतलब जो बाल हैं, तो उसके बाल कटवा दिए सारे, तब जाके फिर वो मर गया, मतलब उसके बाद वो रहा नहीं, जिंदा नहीं रह पाए। तो इस प्रकार विश्वकिशन का उन्होंने जो है सामना किया और उसको ठीक करा। जब इस प्रकार का उन्होंने देखा कि समाज के अंदर इस प्रकार के अपसंप्रदाय हैं, लोग कृष्ण भावना में नहीं हो पा रहे हैं, जो चैतन्य महाप्रभु का रियल प्रीचिंग था वो ठीक ढंग से नीचे नहीं जा पा रही है, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे को भी भगवान विष्णु की एक किरण मेरे घर में आनी चाहिए, मतलब एक ऐसी संतान दीजिए भगवान मुझे जो इन सब चीज़ों में मुझे मदद कर सके, आपके संदेश का प्रचार कर सके पूरे संसार, रे ऑफ विष्णु की इच्छा जाहिर की। और फिर पता चलता है कि जब वो पोस्टेड थे जगन्नाथपुरी में मजिस्ट्रेट के रूप में और पूरा जगन्नाथ जी का उनके पास वो था कार्यभार, तो आप लोगों ने घर देखा होगा, बोला बिल्कुल जगन्नाथ मंदिर से 500 मीटर की दूरी में ही है, तो वहाँ पर रहते थे भक्तिविनोद ठाकुर। तो उनके परिवार में जन्म हुआ बिमला प्रसाद का, और उनके विषय में तो आपने सुना ही बचपन से कि उनका जो कॉर्ड था वो इस तरह से लगा लपटा हुआ था जैसे कि जनेऊ हो। और जब रथ यात्रा का समय आया 6 महीने के बाद तो रथ उनके घर से आगे बढ़ा ही नहीं, और ये हम देखते हैं कई बार सुनते भी कि जगन्नाथ जी कई बार रुक जाते हैं, कई बार वो आगे बढ़ते नहीं, चाहे कितना भी खींचे, लाखों लोग हैं रस्सी पकड़े हुए, बट फिर भी जगन्नाथ जी आगे नहीं बढ़ते। क्या कारण है कि कई बार भक्तों के लिए रुक जाते हैं, किसी भक्त ने ऐसी इच्छा की होती कि भगवान मैं आपकी रथ का दर्शन करना चाहता हूँ, तो कई बार भगवान उस भक्त के लिए रुक जाते हैं, वो भाव देखते हैं किसका है। तो ऐसे ही जब बिमला प्रसाद प्रकट हुए थे, मतलब वो भी भगवान के भक्त थे, तो रथ रुक गया उनके घर के आगे, और बताते शायद 3 दिन तक रुका रहा रथ, 3 दिन तक रथ रुका। और जब उनकी माता आई उनको लेकर बाहर, तो वैसे लेडीज लोगों को चढ़ना अलाउ नहीं है, बट उनकी मजिस्ट्रेट ने बड़े उनकी वाइफ थी तो ऊपर चढ़ने दिया, उन्होंने भगवान के चरणों में उनका सर लगाया तो उनकी माला निकलकर भक्ति सिद्धांत महाराज के गले में, दर्शन के बाद फिर रथ चल पड़ा। तो ये सब सिस्टम ऐसे थे कि महाप्रभु उनको लगा कि यस अब जो मैंने चाहा था कि मेरे परिवार में वैसे बच्चा हो तो वो आ गया है मदद करने के। और राजा थे जो पूरी के, एक बार उन्होंने क्या किया, जो दान का पैसा आता था उसमें से कुछ लगभग 80,000 रुपया, जो 84,000 रुपया बताते हैं, उन्होंने क्या किया, मिस हैंडल कर लिया उसको राजा ने, और फिर उसकी पनिशमेंट क्या दी, उनको उन्होंने बोला कि आप ना भगवान को 52 बार सॉरी 56 बार भगवान को भोग लगाइए। अब 56 बार इतनी वैरायटीज का आइटम का भोग लगाने में उनका सारा पैसा जो था वो वहीं लग गया, सारा का सारा भोग वहाँ लगवा। और साथ ही साथ 52 टाइम्स उन्होंने बोला 56 भोग लगाइए। और जितने भी पंडित थे उन्होंने क्या करा, उस राजा ने भक्ति विनोद ठाकुर जी से बदला लेने के लिए एक यज्ञ करवाया, 30 दिन का यज्ञ। उसका था नाम मारन कर्मानी तांत्रिक। एक यज्ञ करवाया जिसमें था वो चाहते थे कि भक्ति विनोद ठाकुर जी को हम क्या करें, खत्म कर दें। 30 दिन तक वो यज्ञ चला। 30वें दिन जब फाइनल आहुति डाली गई भक्ति विनोद ठाकुर जी को समाप्त करने के लिए, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उस राजा का जो पुत्र था वो मर गया तीसरे दिन आहुति से। तो एक शुद्ध भक्त को अगर कोई इस प्रकार कुछ करने का प्रयास भी करता है तो वो उल्टा पड़ता है। जैसे पद्म पुराण में कहते हैं शुभ ग्रह भूत पिशाच नियुक्त, जो भगवान का भक्त है उसके ग्रह शुभ हो जाते हैं और भूत पिशाच इत्यादि इसको तंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि किसका भक्त है वो, गोविंद भक्ति विहताम में रहा है, वो श्री गोविंद का भक्त है। ऐसे व्यक्ति को कुछ नहीं हो सकता, लेकिन उस प्रकार का डिवोशन भी चाहिए। जैसे हमारे मंदिर में भी कई बार पता चलता है जब किसी भक्ति परिवार में किसी को भूत चढ़ गया है या उसके परिवार में किसी को भूत आता है या आत्मा का मतलब किसी दूसरी आत्मा का उसके ऊपर अटैक होता है, तो ऐसे 2-3 सीन अभी हुए। तो हमारे मंदिर में कुछ भक्त हैं जैसे नाम प्रेम भोग इत्यादि, तो उन्होंने शास्त्रों में पढ़ा है कि क्या करना चाहिए ऐसे समय पर, तो वो जाकर वहाँ पर उन्होंने भागवत कथा करी, खूब हरि नाम किया, खूब भागवत सुनाया और वो भूत वहाँ से भाग। मतलब अभी 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं पिछले कुछ समय में। तो जिन भक्तों का विश्वास ज़्यादा है, जिनके अंदर प्योरिटी ज़्यादा है, तो वो ये कर सकते हैं। और ऐसे भक्तों पर किस प्रकार के भूतों का पिशाचों का भी कोई असर नहीं होता, क्योंकि वो प्योर होते हैं बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। जो लोग शुद्धता का ध्यान नहीं रखते उनके साथ समस्या आती है और जो उनका विश्वास पूरा नहीं रहता। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने स्वानंद सुखद कुंज, ये क्या जगह बता सकते हैं जहां वो रहते थे, उस जगह का नाम था स्वानंद सुखद कुंज। क्यों रखा था ये नाम? क्योंकि ये कुंज का नाम वास्तव में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण जहाँ मिलते हैं, जहाँ ललिता जी का जो कुंज है जहाँ पर राधा कृष्ण मिलते हैं, क्योंकि जो 8 सखियाँ उनकी उनके अपने अलग अलग कुंज हैं। और भगवान जैसे राधा कुंड में भी हैं तो वहाँ पर भी हमें तो नहीं दिखाई देते, राधा कुंड ऐसे बाउंड्रीज के साथ दिखाई देते हैं, बट जो 8 मुख्य गोपियाँ हैं मंजरियाँ हैं इनके अपने अलग अलग कुंज हैं मंजरियों, तो उन कुंजों में किसी न किसी अलग अलग एक एक दिन में भगवान जाते हैं अलग अलग समय में लीलाएं करने के। तो जो श्रीमती ललिता जी का कुंज है उसका नाम है स्वानंद सुखद कुंज। तो इसलिए क्योंकि ललिता जी के अंडर में ये कमल मंजरी, क्योंकि सारी मंजरियां जितनी भी हैं जो राधा रानी की मेड सर्वेंट हैं वो कहीं ना कहीं ललिता जी और विशाखा जी के अंडर में आती सारी, जी टॉप मोस्ट है। तो श्रीमती ललिता जी और विशाखा जी हो गई और 3-3 गोपियाँ और जो मेन हैं, 8 गोपियाँ जो हैं इनके अपने अपने मेन कुंज। तो श्रीमद भक्तिवीर ठाकुर जी जिनका आध्यात्मिक जगत में जो स्वरूप है कमल मंजरी, तो ये ललिता जी के अंडर में है। तो उन्होंने फिर वो नाम रखा कौन सा, जो उनका उनकी मतलब टॉप मोस्ट सर्वेंट का जो कुंज का नाम है, तो वो अपना घर का नाम रखा स्वानंद सुखद कुंज। और इसके साथ साथ गोद्रुम द्वीप में है ये। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक विशेष योगदान दिया हमारे गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में, वो था चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस ढूंढकर। उन्हें अपने घर से एक दिन नदी के दूसरी तरफ प्रकाश आता हुआ दिखाई दिया। तो उन्होंने क्या किया, तो समझ में, जब जब कर रहे थे तो उनको प्रकाश काफ़ी निकला वहाँ से, तो उनको कुछ हुआ कि कुछ है, फिर उनको लगा कि कहीं बर्थ प्लेस तो नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, बंगाल की जितनी भी पुरानी मैन्युस्क्रिप्ट्स थी, जितनी भी लिखी गई थी, जो भी इतिहास था, उसको खंगालना शुरू किया। महाप्रभु का इतिहास सब कुछ ढूंढा, ये ढूंढने के लिए कि किस दिशा में, किन नदी के पास, कहाँ पर चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे। जब देखा वो सब पढ़कर और अन्य आचार्यों से बातचीत करी, तो उनको लगा कि ये जगह वही इंगित करती है जहाँ मुझे दिखाई दी थी। फिर उस समय के जो परम वैष्णव वैष्णव आचार्य थे, वैष्णव सार्वभौम जिन्हें बोलते हैं, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, वैष्णवों में शिरोमणि थे, उनके पास पहुंचे, जिनकी तो उम्र भी बहुत ज्यादा थी, 144 में तो उन्होंने शरीर त्याग कर, उनके पास पहुंचे और उनको लेकर गए उस स्थान पर। वो चल नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे, बिहारी नाम का उनका सेवक था, वो कंधे पर रख कर लेकर आता था टोकरी में बिठाकर। बट उस स्थान पर आने पर उनके अंदर ऐसी स्फूर्ति आ गई, ऐसी ऊर्जा आ गई कि 5-6 फीट की ऊंचाई से कूद कर नीचे आ गए और बोलते कि यही तो निमाय जन्म स्थान, उछलने लगे उसे। और फिर उन्होंने जो है जब बता दिया कि हाँ यही स्थान है, तो फिर तब से वो योगपीठ कहलाता है और हम वहाँ पर दर्शन करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये सबसे बड़ा, बहुत सारे योगदान है, सभी सारे योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये विशेष योगदान था जो आज सारी दुनिया, सारे वैष्णव उस जगह से जो है उसका दर्शन करके शक्ति प्राप्त करके पूरे संसार में प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ और संगठन भी चल रहे हैं जो हमने बताया, आप संप्रदायों में या अन्य बाबा जी के संप्रदाय में जो बोलते हैं कि ये नवदीप नवदीप नहीं है, नवदीप तो इधर नहीं, इस दूसरी तरफ है, और महाप्रभु का योगपीठ भी दूसरी जगह है। कई लोग ऐसा बोलते हैं, शायद कभी आपको मिलें और आपको भ्रमित भी करें, अरे आप लोग तो कहाँ जा रहे हो, आपको तो असली चीज़ पता ही नहीं है, आओ आपको दिखाते हैं। और कई बार उनको इसलिए भी परेशानी होती है कि अब सारी सारी दुनिया उधर ही जाकर दर्शन करती है, उधर ही पैसा चढ़ाती है, उधर ही वो करती है, अपने इधर तो कोई आता ही नहीं। और नवदीप के लोग भी बोलते हैं, अरे भाई असली इधर ही था, उधर थोड़ी था। तो कई कारण हो सकते हैं उनके करने के, लेकिन वो इस प्रकार आपको बोलेंगे कि नहीं नहीं वो तो नकली है। मतलब इतना, मतलब वो है कि जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु की लीला में इतने प्रोमिनेंट पोजीशन पर हैं, जो स्वयं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के अंतरंग पार्षद हैं, और जिन्होंने जगन्नाथ दास बाबा जी जो कि स्वयं एक मंजरी हैं, जिनकी मदद से उस स्थान को ढूंढा, तो आज कुछ लोग बोलते हैं कि वो नहीं है, तो वो इस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं, या फिर ये बोलकर कि आपकी गुरु परंपरा पूरी नहीं है, इस प्रकार लोगों को वो करते हैं भ्रमित, जबकि हमारी जो गुरु परंपरा है पूरी की पूरी ऑथोराइज वे में शिक्षा और दीक्षा के नाम पर पूरी चली आ रही है, उसका हमारे पास सब कुछ है। लेकिन क्योंकि हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि वहाँ से कुछ लोगों को उठा लें, यहाँ से कुछ लोगों को उठा लें, वहाँ से चार लोग हमारी तरफ आ जाएं, हमारा उद्देश्य प्रचार करना और लोगों को सही ढंग से जोड़ना। तो हम उनका काम है ये कि चलो जो जुड़ गए उनमें से दो चरम खींच लें। तो इस प्रकार उनकी संस्था चल रही है थोड़े बहुत दाल रोटी से, तो वो इस प्रकार की चीज़ें करते। तो एक बहुत बड़ी जो है ये उनका योगदान था, जिसकी वजह से हम लोगों को आज योगपीठ का जो है दर्शन होता है। और एक बार भक्तिनाथ ठाकुर जी के खुद के बेटा बीमार हुआ, तो वो जगन्नाथ उनके पास गया, जगन्नाथ दास बाबा जी के पास, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे ऐसे स्किन डिजीज से परेशान हूँ, तो उन्होंने कहा तुम एक रात योगपीठ में सो जाओ। वो एक रात योगपीठ में सोए, रख लें ठीक होगी, क्योंकि उनको भगवान महाप्रभु पर बड़ा विश्वास था। और महाप्रभु सॉरी भक्तिनाथ ठाकुर जी ने चैतन्य महाप्रभु के ऊपर उनकी जीवनी को प्रीचिंग के उद्देश्य से देखिए, ताकि चैतन्य महाप्रभु को सारे विश्व में जाना जाए, समझा जाए, क्योंकि ट्रेडिशन कुछ ऐसी थी। तो उन्होंने विश्व की सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो हैं जितनी भी लाइब्रेरीज थी उसमें चैतन्य महाप्रभु की जीवनी भेजी थी, या चैतन्य महाप्रभु का चरितामृत भेजा था, है ना। और क्या हुआ कि जब शिला प्रभुपाद जी विदेशों में गए और जब उन्होंने प्रचार किया, तो कुछ भक्तों को जब मालूम पड़ा महाप्रभु के बारे में, तब उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज में भी निकाल डाली उनको कि देखिए ये 1896 में जो भेजी थी बुक्स, देखिए जब 1896 में भेजा ना, तो तभी शिला प्रभुपाद जी प्रकट भी हुए थे, वही उनके जन्म का भी ईयर है और यही बुक वहाँ भी चली गई, कैसा वो है, तो सेम ईयर था। तो इस प्रकार वो उनके जब दिखाई तो प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गए और भक्ति विनोद ठाकुर जी के द्वारा भेजी गई बुक उनको मिल गई विदेश में। अब देखिए क्या लिंक है, स्पिरिचुअल लिंक, सारे के सारे लिबरेटेड सोल किस प्रकार कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार उन्होंने उस बुक को कई मैकगिल यूनिवर्सिटी लंदन में और कई जगहों पर उसको देखिए रॉयल एशियाटिक साइंटिफिक उसमें भी था। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो हैं उन्होंने तीन प्रिडिक्शन भी की थी अपने समय में। वो तीन प्रिडिक्शन ये थी कि बंगालीज एंड पीपल फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज वुड असेंबल इन द मायापुर और क्या करेंगे, दे विल चैंट टुगेदर जय शचिनंदन गौर हरि, जय शचिनंदन गौर, कि बंगाल के वैष्णव और पूरे विश्व के वैष्णव एक दिन ऐसा आएगा जब महाप्रभु के जन्म स्थान में मिलेंगे और क्या बोलेंगे, जय शचिनंदन गौर हरि, जय शचिनंदन। ये भक्तिनाथ ठाकुर जी ने प्रिडिक्शन किया। दूसरा उनका प्रिडिक्शन था कि पीपल फ्रॉम ऑल कंट्रीज वुड गो आउट फॉर संकीर्तन कैरिंग मृदंगा एंड करतालस एंड दे विल चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कंट्री टू कंट्री। हर देश में, विश्व में, विदेशों में, वेस्टर्न कंट्रीज में विदेशी भक्त मृदंग और करताल के साथ भगवान का कीर्तन करेंगे सड़कों पर, ऐसा दिन आएगा। और बहुत समय बहुत जल्दी एक ऐसा भक्त आने वाला है जो विश्व में जाकर विदेशों में जाकर ये काम करेगा। भक्ति ने ठाकुर जी से किसी ने पूछा पृथ्वी त्याचे नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होए बुमरना, कि ये जो श्लोक है 1900 की बात बता रहे हैं। उन्होंने पूछा कि जो ये प्रिडिक्शन हुई है, ये पृथ्वी शब्द क्या कलकत्ता के लिए इस्तेमाल किया गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने यह बोला था कि पृथ्वी की हर जगह पर होगा। चैतन्य महाप्रभु गए लगभग 350 वर्ष हो चुके, अभी तक तो हुआ ही नहीं, कोई भी नहीं जानता महाप्रभु को, कलकत्ता और क्या कहते हैं बंगाल में जानते हैं थोड़े बहुत लोग, तो कहीं ये पृथ्वी शब्द गलत तो नहीं लिख दिया, या ये पृथ्वी खाली कलकत्ता या बंगाल के लिए तो नहीं इस्तेमाल हुआ था कहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, तुम देखना शीघ्र ऐसा एक भक्त आएगा जो पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का महाप्रभु को प्रचार करेगा, तुम देखना कि सड़कों पर विदेशी लोग मृदंग और करताल के साथ भगवान का नाम का कीर्तन करेंगे। और तीसरा बोला कि विश्व भर के लोग वेस्टर्न डिवोटीज बंगाल के डिवोटीज के साथ इसी जगह पर महाप्रभु की जय शचिनंदन गौर हरि का कीर्तन करेंगे। तो ये कुछ प्रिडिक्शन उन्होंने करी थी। और साथ ही साथ सज्जन तोशी नाम की वो अपनी मैगजीन निकालते थे, उसमें आर्टिकल्स इत्यादि लिखते थे। और एक और भक्त थे चरणदास बाबा जी महाराज, जिनके साथ उन्होंने कई बातें करी, कई तरह के डिबेट हुआ। तो वो बताते थे मंत्र बोलते थे, भज हरे कृष्ण राम निताय गौर राधे श्याम, लाउड कीर्तन, वो ये कहते थे अपने डिसाइपल्स को बोलने के लिए। तो उसी तरह का एक संप्रदाय था। तो भक्तिनाथ ठाकुर जी ने उनको बोला कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। काफ़ी डिबेट उनको समझाया हरे कृष्ण महामंत्र के विषय में, और बाद में उनको रियलाइज़ भी हुआ और उन्होंने उनसे माफ़ी भी मांगी कि मैं गलत कर रहा था। और बाद में उनको जब उन्होंने ऐसा करा तो क्योंकि नाम के प्रति अपराध है कहने के, तो वो पागल भी हो गए और उनकी बड़ी दयनीय स्थिति में मृत्यु भी हुई इस तरह के नाम के प्रति अपराध के कारण में। बहुत दुख में उन्होंने शरीर त्यागा। तो आखिरी में मैं थोड़ा सा वो पढ़ना चाहूँगा जो भक्ति विनोद ठाकुर जी का जीवन का शेड्यूल था एक दिन का। वो शेड्यूल बहुत इंस्पायरिंग है और हम देख सकते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इस शेड्यूल को अपनाकर अपने पूरे जीवन में क्या क्या काम किए। मजिस्ट्रेट होते हुए गवर्नमेंट में और सरकारों को बहुत पसंद करती थी, इतना पसंद करती थी कि उनके घर से स्वानंद सुखद कुंज से उनके घर के आगे से रेल का ट्रैक बनाया था कोर्ट तक जाने के लिए। वो घर से बाहर निकलते थे, उनको केवल दो कदम चलना होता था गेट से, एक दो, बस दो कदम, मतलब 3.5 फीट की दूरी पर वो रेलवे ट्रैक था, 3 फीट की दूरी। आप लोगों में से किसी ने देखा वो रेलवे ट्रैक? हाथ खड़ा करो। लगभग 60-70% लोगों ने देखा है, और जो अभी तक मायापुर नहीं गया अब जाएगा तो अब नहीं दिखेगा, क्षमा कर, अब वो रेलवे ट्रैक हटा लिया गया 2-3 साल पहले। तो बहुत सौभाग्यशाली लोगों ने देख लिया। तो इतनी उनकी जो है एक्सपर्टीज थी काम करने में, काम के प्रति लगन, और उनकी जो जजमेंट देने का जो उनकी कला थी, अंग्रेज लोग बहुत खुश थे उनसे, इसलिए उनके घर के बाहर से रेलवे ट्रैक निकाला था। हमारे यहाँ तो कैब भेजते हैं, कैब उसमें भी शेयरिंग होती है वो भी इसलिए भेजते हैं क्योंकि भाई ठीक है जैसे काम कर रहे तब तक ठीक है। तो उनका जो शेड्यूल था दिन का वो हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी का जो डेली शेड्यूल था वो 7:30 शाम के समय की बात कर रहे हैं, 7:30 से 8 बजे रेस्ट करते थे, शाम को 7:30 से 8, नहीं सॉरी 7:30 से 8 बजे रेस्ट करते थे और 10 बजे उठ जाते थे। हमारा शेड्यूल क्या है? 10 बजे, 11:30, 11:30 अपना लाइट ऐसे नहीं थी, बटन दबाओ जो ऑयल लैंप होते थे वो जलाते थे काम करने के लिए, और फिर राइटिंग शुरू करते थे रात के 10 बजे, पिन ड्रॉप साइलेंस। फिर 10 से लेकर 4 तक यही काम करते थे, कितने घंटे हो गए? 6 घंटे राइटिंग, फिर 4 बजे रेस्ट करते थे, 4:30 बजे उठ जाते थे। फिर उठने के बाद हाथ मुंह धोना, नहाना इत्यादि, और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना शुरू करते थे। 7 बजे तक वो ये काम करते थे, जप इत्यादि का काम। फिर वो लेटर्स लिखना शुरू करते थे क्योंकि अब ईमेल व्हाट्सएप तो नहीं था, क्या करते तो वो राइटिंग लेटर्स के थ्रू करते थे। फिर 7:30 बजे खुद की रीडिंग करते थे, 7:30 से 8:30 तक, 1 घंटा। और फिर 8:30 बजे से वो जो गेस्ट लोग आते थे उनसे मिलना, या फिर अपनी नहीं आए तो अपनी फिर से रीडिंग शुरू करें। 9:30 से लेकर 9:45 तक फिर रेस्ट करते थे 15 मिनट। फिर 9:45 से अपना स्नान, अपना ब्रेकफास्ट और अपना 250 ग्राम मिल्क और कपल ऑफ दो चपाती खाते थे और कुछ फल लेते थे, और ये सब ले लेते थे वो 10 से 15 मिनट में, 9:45 लिखा है और फिर 9:55 तक करते थे, कितना टाइम हो गया? 10 मिनट इतने में खा लेते थे। और फिर 9:55 पे वो घर से बाहर निकलते थे और कोर्ट के लिए चले जाते थे। फिर जब कोर्ट से आते थे वापस तो बीच में रिसेस का भी टाइम होता था, और शाम को आने के बाद फिर से ये रूटीन शुरू हो जाता 7 बजे। तो मतलब कोर्ट की जॉब करने के बाद ये सारे काम करते थे और अपने 6 घंटा राइटिंग। तो बताते 100 पुस्तकें उन्होंने लिखी थी अपने जीवन में। बड़े सारे वैष्णव भजन उन्होंने लिखे, कई आरतियां लिखी जो हम लोग रोज पढ़ते हैं, आपको याद है कौन कौन सी आरतियां जो हम गाते हैं? हाँ, जय राधा माधव भी उनके द्वारा लिखा गया, रचित है। संध्या आरती जो हम गाते हैं जिसे गौर आरती बोलते हैं वो भी उनके द्वारा है, और प्रसाद प्रार्थना बोलते हैं जो हम शरीर विद्या जा जनेन्द्रिय ताहे का, वो भी इनके द्वारा रचित है। और इतनी सुंदर प्रार्थना है ये शरीर विद्या जल वाली, कई लोगों को प्रार्थना भी नहीं मालूम। कई मैंने संगठनों में देखा है जब प्रसाद प्रार्थना बोलते हैं तो कई अलग तरह के मंत्र बोलते हैं जिसका कि प्रसाद से कोई लेना देना नहीं होता। मैं भी उसको प्रार्थना समझता था कभी, तो मैं भी उसको बोलता था शुरू में, तो मेरे को लगा कि क्या ऐसा तो कहीं। और ये जो है प्रार्थना, आप सोचकर देखिए, शरीर अविद्या, साफ बता रहे हैं कि जो शरीर है ये अविद्या का जाल है। जनेन्द्रियता है कल, इसमें जो जनेन्द्रियां हैं ये इसकी वजह से हम फंसे हुए हैं। जीवा फैले विषय सागरे, ये जीवा है इसको सेटिस्फाई करने के चक्कर में हम इस संसार में बार बार आ रहे हैं। तार मध्य जीवाती, इसके मध्य में जो इन जनेन्द्रियों के मध्य में जो जीवा है इसको जीतना बहुत मुश्किल होता है। मध्य जीवाती लोभ मय सुदुर्मति, इसके लोभ के कारण हम लोग हमारी मति लगी रहती है। ताके जीता कठिन संसारे, इसको जीतना बहुत कठिन है। आप कुछ भी जीत सकते हैं लेकिन इसको जीतना बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या है, कृष्ण बड़ा दयामय है, उन्होंने इस जीवा को जीतने के लिए अपना प्रसाद हमारे पास छोड़ दिया। अगर हम लोग उस प्रसाद का सेवन करेंगे, राधा कृष्ण का भजन करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें कृपा प्राप्त। कितनी सुंदर भजन, कितना सुंदर प्रार्थना है। वो बात अलग है कि प्रार्थना हमें याद हो गई, प्रसाद प्रार्थना बोल खाने से पहले हम प्रार्थना बोलते भी हैं लेकिन हम उसका मतलब भूले होते हैं, उसको केवल रूटीन टाइम करके ख़त्म और तुरंत प्रसाद पेट अटैक। इसका मीनिंग सोच कर समझ कर उस पर मेडिटेट कर कर अगर बोलेंगे तो उसका पूरा फायदा मिलेगा। कई बार तो प्रसाद प्रार्थना और उसका मतलब बोलना चाहिए, मतलब भी याद करना चाहिए और उस पर मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि प्रसाद सेवन भी क्या है, कृष्ण सेवन है, कृष्ण की सेवा है, तो बहुत जरूरी है। और फिर जिस मानसिकता से हम प्रसाद देते हैं, जिस रजोगुण में जब हम प्रसाद लेते हैं तो फेथ नहीं होता या फिर हमारी श्रद्धा नहीं बढ़ पाती किसी भी कारण, तो ये भी बहुत जरूरी है। कृष्ण का डायरेक्ट संग कर रहे हैं हम, लेकिन वो कितनी ही जिसे बोलते हैं इनअटेंटिवली कर रहे हैं। उसी तरह चैंटिंग भी हमारी होती है, उसी तरह हर चीज़ फिर हमारी होती है। तो ये उनके कुछ भजन थे, यशोमती नंदन भजन, योगपीठ उनका भी उन्होंने भजन तीन सॉरी, और इसके अलावा भोग आरती उन्होंने भी भज भक्त वत्सल शिवर हरि, जो दोपहर में भोग रहता है वो उन्होंने गाया। इसके अलावा उनके इतने सारे भजन हैं, और कल्पतरु करके भजन की बुक है जिसमें बहुत सारे भजन लिखे हैं। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, तीन भजन है इस पर। और इसके अलावा हमें जमीना पुली ने हमेशा जी भी उनका भजन है जिसमें वो अपने स्वरूप को प्रकट कर रहे हैं कि मैं भगवान की सेवा किस रूप में और क्या सेवा करता हूँ, तो वो भी उन्होंने बोला है कि मेरी क्या सेवा है भगवान की जगह, तो भजन के द्वारा उसको खोला है। और एक विशेष भजन जो उनके उसमें मिलती है वैष्णव बुक्स में, कि जिसमें वो अपने को कुत्ते के समान मतलब एक कह रहे हैं कि मेरे को अपने गुरु को कह रहे हैं कि मुझे अपने पैरों में रखो, चरणों में रखो, जैसे कुत्ते को रखते हैं, उसी तरह से मैं रहकर मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, पूँछ हिलाऊंगा, ये करूँगा। एक वैष्णव ऐसी स्थिति का वैष्णव इतना जो है दयनीय प्रार्थना कर रहे हैं भगवान के आगे, तो बहुत उनका जो है इसमें। और उन्होंने जो है बताते हैं इस हाँ जी विवाह विशेष बहुत सारे भजन हैं उनके, पूरी बुक है उनकी। तो ये सारे भजन लिखे और ये सारे भजन उनकी एक्सरसाइज हैं, उनका उनकी मतलब जो है रियलाइजेशंस हैं। प्रभुपाद जी कहते थे तो हमारे वैष्णवों ने आचार्यों ने जो गीत लिखे हैं ये और वैदिक टीचिंग बराबर है। आप वेद पढ़ लीजिए या इनके भजन पढ़ लीजिए, बराबर है। इसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई भजन पढ़ के सोचे कि मेरे को कुछ और समझ आ गया, कुछ और डाइवर्ट हो गया, नहीं। हमारे को जो भजन सुनने को मिलते हैं, लोगों को जो भजन सुनने को मिलते हैं, ये भजन वास्तव में भजन नहीं है, ये तो केवल पैसा कमाने का माध्यम है और कुछ लीलाओं से संबंधित कुछ करके डेविएट कर और कुछ ना कुछ स्पेकुलेशन डालकर भजन बनाएंगे या उसी के आधार में पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। हमारे वैष्णव लोग जो भजन बनाते हैं या भजन जो उन्होंने लिखे हैं उनके एक्सरसाइज हैं या फिर वो उनके रियलाइजेशंस हैं, और इनका आधार है वेद पुराण और भगवान की लीलाएँ जो एक्चुअल में हुई हैं, वो आधार है ना। और वो टीचिंग्स जो रूप सनातन की टीचिंग्स हैं उनको आधार बनाकर वैष्णव भजन लिखे गए। तो वैष्णव भजन पढ़ना तो जो जिसने ग्रंथ पढ़े हैं वो समझ सकता है कि सारे वैष्णव भजन भी वही ज्ञान दे रहे हैं हमें जो है। इस प्रकार जो है इतने सारे भजनों को और विशेषकर कई पुस्तकों को जो उन्होंने लिखा, जैसे जैव धर्म है ना, कई पुस्तकें उन्होंने लिखी जो हमारे पास अभी भी अगर ढूंढें इनके उसमें जाकर तो काफ़ी पुस्तकें इस समय अवेलेबल हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज के वास्तव में शिक्षा गुरु उनके पिता ही थे, लेकिन वो दीक्षा के लिए उन्होंने गौर किशोरदास बाबा जी के पास भेजा और उन्होंने अपने पिता के टीचिंग्स को ही अपना वो बनाया, क्या कहते हैं जिसे सहारा बनाया और उसी के सिद्धांत पर प्रचार किया, तभी वो लॉयन गुरु कहलाए, सिंह गुरु, अपने पिता की टीचिंग के आधार पर। और इतने स्ट्रांग थे कि लोगों का तो बैंड बज जाता था अगर वो देख लें सामने, तो कई बार मलमूत्र भी त्याग देते थे कई लोग पेंट, ऐसी हालत होती थी उनको देख कर। लॉयन गुरु थे, उनके सामने टिक नहीं सकता था, उनको मालूम था ये व्यक्ति जो है बहुत बहुत ज़्यादा पवित्र है और कठोर साधना वाला व्यक्ति। तो ऐसा रे ऑफ विष्णु उन्होंने प्रकट किया था। और बताते हैं कि June 23 उन्होंने जो है 1914 में नित्य लीला प्रविष्ट हुए भगवान श्री कृष्ण की लीला में वापस। तो आज उनका जो है क्या है, तिरुभाव दिवस है भक्ति में ठाकुर जी। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनके इस जीवन को देखकर, सुनकर, समझकर। और प्रार्थना किस रूप में करनी चाहिए कि हम भी तो गृहस्थ में हैं, हमारे काम या हमारी एंगेजमेंट या हम उतने बिजी हैं, ऐसी पोस्ट नहीं है उसके बावजूद हम इतने बिजी हैं। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि किस प्रकार हम भी उनसे इंस्पिरेशन लेकर कुछ इस जीवन में कुछ योगदान कर सकें, कुछ पुस्तकें पढ़ सकें, उनकी टीचिंग से अकॉर्डिंग जीवन जी सकें। उनकी जो ये सिद्धांत को पेश करने का जो था उसके लिए जाने जाते थे, तो हमारे अंदर भी कुछ इस तरह की पवित्रता, इस प्रकार की साधना बने ताकि हम भी कुछ योगदान कर सकें। और दूसरे थे गदाधर पंडित, उसके बारे में तो इतना समय नहीं है बोलने के लिए, लेकिन वो श्रीमती राधा रानी स्वयं थी जो कि बचपन से महाप्रभु के साथ रही उनके संविका बनकर। और अंत में उन्होंने भी जो है टोटा गोपीनाथ में महाप्रभु भगवान की विग्रहों की सेवा करी महाप्रभु जाने के बाद। और वो आज भी हम लोग देख सकते हैं उस जगह पर जाकर टोटा गोपीनाथ का दर्शन कर सकते हैं। तो गदाधर पंडित स्वयं राधा रानी हैं जो कि पोषण करती हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु। तो उनसे भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए जो कि हमारे जो है भक्ति में हमें आगे बढ़ा सकें। ठीक है, हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की, श्री भक्तिनाथ ठाकुर महाराज की निताय गौर प्रमाण। हमें भक्तिनाथ ठाकुर जी का वैष्णव प्रणाम मंत्र याद है, मैं बोलता हूँ, अगर रुको ना तो आप पीछे बोलने का प्रयास कीजिए। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरश करुणा, सॉरी गौरश क्या था, गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। इनके पुत्र के उसमें भी आता है तो उसमें गौर करुणा शक्ति आता है, तो मैं हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ। उनमें गौर करुणा शक्ति है, ये गौर करुणा गौर शक्ति स्वरूप आए हैं और रूपानुगा बनाए। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए उनका मंत्र याद कर कर भी, और उनसे वैसे भी विशेष प्रार्थना करनी चाहिए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।